नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जया भारती। मुख्य समाचार। दिल्ली में पेंशन प्राप्त करने वाली विधवा महिलाएं और दिव्यांगजन अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने यूथ कांग्रेस के 5 सदस्यों की पुलिस हिरासत 4 दिनों के लिए बढ़ाई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेले का शुभारंभ किया। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने हिंदू कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा आयोजित 3 दिवसीय सम्मेलन संवाद 2026 का उद्घाटन किया और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव का आयोजन दिल्ली में 25 मार्च से। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने बताया है कि पेंशन प्राप्त करने वाली विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों को अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। इस अवसर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इससे विधवा पेंशन पाने वाली 3,90,000 से अधिक महिलाओं और दिव्यांगजन पेंशन योजना के करीब 1,31,000 लाभार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस निर्णय के बाद लगभग 5.5 लाख अतिरिक्त परिवार मजबूत स्वास्थ्य सुरक्षा के दायरे में आ जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं बल्कि दिल्ली के प्रत्येक जरूरतमंद परिवार के स्वास्थ्य और सम्मान से जुड़ी एक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मालवीय नगर इलाके में अरुणाचल प्रदेश की 3 महिलाओं के साथ कथित दुर्व्यवहार की घटना की कड़ी निंदा की है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि पुलिस आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है।
कुछ लोगों द्वारा जो दुर्व्यवहार हुआ, ये घटना मेरे संज्ञान में आई। मैं जल्द उन बहनों से मिलूंगी, पर मैं ये बात कहना चाहती हूँ, देश की राजधानी दिल्ली पे हम सब अलग अलग राज्यों से आए हुए लोगों का जितना अधिकार है, उतना ही मेरे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों का भी अधिकार है। आज देश के सीमावर्ती राज्यों से वो लोग दिल्ली में आते हैं अपना जीवन यापन करने के लिए, बड़ी मेहनत के साथ में वो काम करते हैं और दिल्ली को गति देते हैं। कोई भी दुर्व्यवहार उनके साथ बर्दाश्त नहीं होगा। जिन्होंने ऐसा किया उस पर कड़ी कार्रवाई होगी।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने अरुणाचल प्रदेश की 3 महिलाओं का राष्ट्रीय राजधानी में कथित तौर पर अपमान करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आज संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि उस पर कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि यदि कोई पूर्वोत्तर के लोगों के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज दिल्ली भेषज विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में स्नातक के छात्रों को सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री सक्सेना ने कड़ी मेहनत, अनुशासन और लगन से अपनी शैक्षणिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा करने वाले पर उन सभी को शुभकामनाएं दी।
प्रिय स्नातक विद्यार्थियों, ये दीक्षांत समारोह केवल प्राप्त डिग्रियों का उत्सव नहीं है बल्कि सपनों की उड़ान का उत्सव है। आप ऐसे समय में स्नातक हो रहे हैं जब भारत ये नहीं पूछ रहा कि भविष्य क्या होगा बल्कि ये पूछ रहा है कि इसका निर्माण कौन करेगा, और इसका उत्तर है आप।
दिल्ली की एक अदालत ने भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान शर्टलेस यानी बिना कमीज पहने हुए विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए यूथ कांग्रेस के 5 सदस्यों की पुलिस हिरासत 4 दिनों के लिए बढ़ा दी है। इन आरोपियों को 20 फरवरी को एआई शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान गैर कानूनी सभा आयोजित करने के आरोप में पकड़ा गया था। दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस अदालत से आरोपियों की हिरासत बढ़ाने की मांग की थी। मामले की अगली सुनवाई 1 मार्च को होगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि सरकार उर्वरकों की उपलब्धता को मजबूत कर रही है, नकली कीटनाशकों की बिक्री पर अंकुश लगा रही है और किसानों को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए जल्द ही किसान पहचान पत्र जारी करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को लगभग 1,90,000 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। श्री चौहान ने कहा कि यह मेला कृषि का महाकुंभ बनना चाहिए जिससे बड़ी संख्या में किसान अपने उत्पादों के साथ साथ कृषि संबंधी नवाचारों का प्रदर्शन कर सके। 2 दिन का यह आयोजन शुक्रवार तक चलेगा। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सुरक्षित, सम्मानजनक और बेहतर कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता श्रमिकों को पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा, बीमा, स्वास्थ्य सुविधाएं और कौशल विकास के अवसर प्रदान करना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली लोक निर्माण विभाग द्वारा रात में सुरक्षा और दृश्यता को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इस योजना के अंतर्गत 1,00,000 सामान्य स्ट्रीट लाइट्स के स्थान पर अत्याधुनिक इंटेलिजेंट LED स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी। विभाग ने बताया कि इससे बिजली की खपत में उल्लेखनीय कमी आएगी और प्रकाश गुणवत्ता स्वीकृत मानकों के अनुरूप सुनिश्चित होगी। उन्होंने यह भी बताया कि नई स्मार्ट LED स्ट्रीट लाइट्स में स्वचालित ऑन ऑफ प्रणाली, रिमोट मॉनिटरिंग और रियल टाइम फॉल्ट डिटेक्शन जैसी उन्नत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 8 की NCERT पाठ्य पुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के उल्लेख का स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे गंभीर चिंता का विषय बताया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की खंडपीठ ने इस मामले का संज्ञान लिया। एक रिपोर्ट।
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायालय के समक्ष कहा कि कक्षा 8 के बच्चों को न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ाया जा रहा है, जो अत्यंत चिंताजनक है। न्यायमूर्ति बागची ने टिप्पणी की कि ये विषय वस्तु संविधान की मूल संरचना के विरुद्ध प्रतीत होती है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि बार एसोसिएशन और पीठ दोनों ही इससे चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी इस मुद्दे से विचलित हैं। पीठ ने स्पष्ट किया कि वो किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने की अनुमति नहीं देगी। कक्षा 8 की नई सामाजिक विज्ञान NCERT पाठ्य पुस्तक के अनुसार भ्रष्टाचार, लंबित मामलों का भारी बोझ और न्यायाधीशों की कमी न्यायिक प्रणाली के सामने आने वाली कई चुनौतियों में से एक है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानूनी अनुसंधान को बढ़ावा देने और मुकदमों से संबंधित डेटा का विश्लेषण करके कानून के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नई दिल्ली में संपन्न हुए इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में यह बताया गया कि किस प्रकार भारत के कानूनी तंत्र में AI तेजी से बदलाव ला रहा है। AI संचालित अनुसंधान उपकरण अब ग्राहक के प्रश्नों से लेकर दस्तावेज समीक्षा और मुकदमों का प्रबंधन तक संभाल रहे हैं। इससे कार्य निष्पादन में समय कम लगने के साथ दक्षता में भी सुधार हो रहा है। समिट में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में लेक्स लेगिस AI के प्रबंध निदेशक साकार यादव ने कहा कि उनका उत्पाद कानूनी दस्तावेजों के मसौदा तैयार करने को और अधिक बेहतर बनाएगा।
हम लोग एक लीगल AI जिसको हम लोग लीगल एड कहते हैं, जिसमें हम तीन मुख्य चीज हैं, आस्क, इंटरैक्ट और ड्राफ्ट। आस्क जो है वहाँ पे आप केस रिसर्च कर सकते हैं। हम लोग भारत के सबसे बड़े डेटा, जुडिशियल डेटा का हम लोग एक कलेक्शन है, जिसको हम लोग ने छोटे छोटे पार्ट्स में मुद्दे में तोड़ा है। इसके अलावा एयर गैप मॉडल है, जो आप लोग बिना इंटरनेट का अपना लीगल AI यूज कर सकते हैं।
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज हिंदू कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा आयोजित 3 दिवसीय सम्मेलन संवाद 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री गुप्ता ने कहा कि इस तरह की पहल संवैधानिक संस्थाओं और युवाओं के बीच एक सेतु का निर्माण करती है, जो सम्मेलन के विषय के अनुरूप सूचित संवाद और जनसेवा की भावना को बढ़ावा देती है। इसके साथ ही श्री गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा सचिवालय के कॉफी टेबल बुक स्टॉल का उद्घाटन भी किया और विशेष स्मारक प्रकाशन शताब्दी यात्रा विट्ठल भाई की गौरव गाथा को प्रदर्शित किया। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष के ने आयोजन स्थल पर भारतीय वायुसेना के स्टॉल का भी अवलोकन किया। उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों से बातचीत की, प्रदर्शनियों को देखा और वहां स्थापित फ्लाइट सिमुलेटर का अनुभव भी लिया। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान कल से 3 दिन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अन्वेष 2026 का आयोजन करेगा। सम्मेलन में 1,000 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। कार्यक्रम उभरते और टिकाऊ स्वास्थ्य वर्धक खाद्य पदार्थों के लिए उन्नत अगली पीढ़ी की दृष्टि पर आधारित है। यह सम्मेलन कृषि खाद्य उद्यमिता जैसे उभरते क्षेत्रों पर संवाद के लिए एक सशक्त वैश्विक मंच प्रदान करेगा, जिसे लचीली, स्वस्थ और टिकाऊ खाद्य प्रणालियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। शिक्षा मंत्री आशीष सूद कल रोहिणी स्थित महाराजा अग्रसेन कॉलेज में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में नवनिर्मित विद्यार्थियों विद्यार्थी सुविधा केंद्र शामिल हैं। यह आधुनिक केंद्र छात्रों की शैक्षणिक और प्रशासनिक आवश्यकताओं से जुड़ी विभिन्न सेवाओं को उपलब्ध कराएगा। इस कार्यक्रम के दौरान श्री सूद भारतीय ज्ञान परम्परा केंद्र का शिलान्यास भी करेंगे। यह केंद्र भारत की समृद्ध बौद्धिक सांस्कृतिक और दार्शनिक परंपराओं के अध्ययन तथा शोध को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव आयोजित होने जा रहा है। यह उत्सव 25 मार्च से 31 मार्च तक चलेगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह महोत्सव दिल्ली को वैश्विक सांस्कृतिक और सिनेमाई केंद्र के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह महोत्सव केवल फिल्मों का आयोजन नहीं बल्कि राजधानी की रचनात्मक शक्ति, सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक सोच का उत्सव है। यह शहरव्यापी फिल्म महोत्सव भारत मंडपम सहित राजधानी के विभिन्न प्रतिष्ठित स्थलों पर आयोजित किया जाएगा। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस आयोजन से स्थानीय फिल्मकारों को अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलेगा। इसके साथ ही फिल्म पर्यटन पर प्रतिभा विकास और रचनात्मक उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम द्वारा आयोजित इस महोत्सव में 125 से अधिक भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही गाला प्रीमियर, मास्टर क्लास, फिल्म उद्योग संवाद, कार्यशालाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। उन्होंने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव के तहत फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जाएगा, जिससे शहर की सांस्कृतिक पहचान और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस महोत्सव के माध्यम से युवा प्रतिभाओं को अपनी रचनात्मक क्षमता प्रदर्शित करने और उद्योग से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
दिल्ली पुलिस के मादक पदार्थ निरोधक कार्यबल ने यमुना पार क्षेत्र से आज एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार तस्कर के पास से 1 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ जब्त किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 6 करोड़ रुपए है। तस्कर से एक स्कूटी, एक सोने की चेन और एक आईफोन भी बरामद किया गया है। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया कि द्वारका जल शोधन संयंत्र के अंतर्गत भाग्य विहार क्षेत्र में इंटरकनेक्शन कार्य के कारण कुछ इलाकों में कल सुबह 11 बजे तक जल आपूर्ति बाधित रहेगी। इसमें द्वारका सबसिटी, महावीर इनक्लेव, विजय इनक्लेव, उत्तम नगर कॉलोनिया, पोचनपुर, लक्ष्मी विहार, बिजवासन, छावला, गोयला डेरी, नांगलोई, मटियाला, पालम, कापसहेड़ा, नजफगढ़ टाउन और आसपास के अन्य क्षेत्र शामिल है। जल बोर्ड ने लोगों से आवश्यकता अनुसार पानी का भंडारण करने की अपील की है। और अब दिल्ली के मौसम की जानकारी। राजधानी में दिनभर धूप खिली रहने के साथ मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। विभाग के अनुसार कल सुबह मौसम साफ रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली में पेंशन प्राप्त करने वाली विधवा महिलाएं और दिव्यांगजन अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने यूथ कांग्रेस के 5 सदस्यों की पुलिस हिरासत 4 दिनों के लिए बढ़ाई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेले का शुभारंभ किया। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने हिंदू कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा आयोजित 3 दिवसीय सम्मेलन संवाद 2026 का उद्घाटन किया। और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन दिल्ली में 25 मार्च से। यह आयोजन दिल्ली में पहली बार होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।